मेरा नाम इकरार अहमद है, मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ हज डायरेक्टरेट में। मैं अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि एहराम जब बांधते हैं, एहराम की नियत करते हैं, तो उससे पहले तलबिया पढ़ना चाहिए या एहराम की नियत करने के बाद पढ़ना चाहिए, और कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? और ये लोग जो हज करते हैं, अगर जिनके रिश्वत के पैसे में अगर कोई हज करता है, तो क्या उसके लिए हुक्म है, क्या शरीयत क्या कहती है उस सिलसिले में, ज़रा उसके बताएं।
अहराम की तरतीब ये है, सुन्नत के मुताबिक तो देखा जाए तो पहले गुस्ल करे, बल्कि ये कि वो ज़रूरत गैर ज़रूरी बाल हैं ये भी दूर करे, नाखून भी ले और गुस्ल करे, अहराम की दो चादरें लपेटे और मकरू वक्त ना हो तो दो रकअत अदा करे अहराम के नफल कहलाते हैं। दो रकात पढ़ने के बाद जबकि मकरू वक्त ना हो तो दो रकात पढ़ ले गैर मकरू वक्त में, और इसके बाद नियत करे। उम्रे का अहराम है तो उम्रे की नियत करे, हज का अहराम है तो हज की नियत करे। उम्रा और हज दोनों मिलाकर कर रहा है तो दोनों की इकट्ठी नियत करे, जैसे कुरान में की जाती है। जो ये सब नियतें अल्हम्दुलिल्लाह रफीकुल हरमैन में लिखी हुई है, जो कि मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है। यह हज की किताब है और रफीकुल मोतामेरीन यह उम्रे की किताब है, मकतबतुल मदीना से ये भी मिल सकती है। तो ये नियत करे, नियत करने के बाद अब तलबिया यानी लब्बैक पढ़े। अगर लब्बैक नहीं पढ़ी, खाली नियत कर ली, तब भी एहराम नहीं होगा, मुहरिम नहीं कहलाएगा। लब्बैक या इसकी मिसल कहना ये जरूरी है। दूसरा सवाल यह था कि रिश्वत के पैसों से हज किया तो हज हो गया नहीं। दरअसल हज जो है ना, ये मखसूस मनासिक का नाम है। तो ये अगर रिश्वत के पैसों से इसने सफर किया और जो इसने खर्च किया, ये तो गुना ही गुना गुना ही गुना गुना ही गुना। रिश्वत के पैसे जो है ना, ये जिस तरह डाकू लूटता है ना किसी से पैसे छीनता है, तो इसी की मिसल ही है। जिस तरह अब ये डाकू बदनाम होता है, भागता फिरता है, पुलिस पीछे घूमती है, और अगर यही पुलिस वाला रिश्वत खोर हो और ये डाकू की तरह रिश्वत ले रहा है तो इसको लोग सलूट मारते हैं। ये बस दुनिया की वो रंगी नहीं है, नरंगी है दुनिया के तमाशे। हालांकि दोनों ही मुजरिम हैं, दोनों ही डाकू हैं।
बाबा, डाकू को तो कोई दिल से नहीं देता ना, यहाँ रिश्वत तो दिल से भी तो दी जाती है। नहीं, डाकू अगर किसी का कोई माल लूटता है तो उसमें देने वाले क्या कोई मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं होती, मतलब उसको सदमा ही होता है। लेकिन रिश्वत तो कई जगहों पर देखा जाता है, रिश्वत लेने वाला तो खुशी खुशी ले रहा होता है, देने वाले को भी क्या मतलब इसमें इतनी तकलीफ होती है।
क्या तकलीफ होती है, ये तो जो दे उसको पता चलेगा कि पैसे देने जो है ना मंजिल, यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। इसका बस चलता तो कभी भी रिश्वत ना देता, ये मजबूर होता है कि रिश्वत नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा आगे। और ये जो मतलब है ना कि सफेद पोश डाकू जो है ये मुझे मेरे लिए मसले करेगा तो इसके कुत्ते के मुंह में हड्डी ठोंस देते बतौर रिश्वत, और क्या। ये भी डाकू हैं जो रिश्वत खोर है, इन्हें अगरचे डाकू की इस्तेला इनके लिए नहीं है लेकिन है तो मिसले डाकू। ये सफेद पोश डाकू है, वो बदनाम डाकू है दोनों डाकू, और दोनों एक दूसरे को मार भी रहे हैं। हाँ, आपको पता, आपके सामने ही है, कभी वो हाथ में आ जाते तो ये मार देते, ये हाथ में आते ये मार देते। तो खैर, वो हर पुलिस वाला रिश्वत खोर नहीं होता, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उमूमन ये शोभा जो है हमारा रिश्वत के हवाले से बहुत बदनाम है। अफसोस, हम मुल्क तो आजाद करवाने में कामयाब हो गए, अपने आप को शैतान से आजाद करवाने में हनूज नाकाम है। काश हम भी शैतान से आजाद हो जाते।
जंग लड़ते रहेंगे तो हो जाएंगे ना
इंशाल्लाह।
बाबा, शैतान के खिलाफ जंग
जारी रहेगी
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।
वो रिश्वत के पैसों से अगर जैसे सफर किया भी तो सारा, वो तो अब रिश्वत के पैसे का तो ये मालिक है नहीं, इस पर तो फर्ज है कि जिससे लिया है उसको लौटा दे। अब सफर किसी ने कर भी लिया हराम पैसों से और वो अब इसने हज के मनासिक अदा किए, तो ये हज के मनासिक चूंकि पैसों का नाम नहीं है, तवाफ करना है, इसमें सही करनी है, शैतान को कंकरियां मारना, तो ये اس میں رشوت کا براہ راست تلوث نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.